पैदल उन्हें करनी पड़ी, पर उन्होंने की। तो इसी प्रकार भगवान की सेवा में हम सब के सामने कई बार हमें भी भगवान की सेवा के संबंध में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे विदेशों में हमारे भक्त जब प्रचार करते हैं, बहुत कठिन स्थिति में प्रचार करते हैं, वहाँ अमेरिका भी हो कोई भी देश हो, पश्चिम देश के लोग चाहते नहीं कि वैदिक संस्कृति का प्रचार हो। तो अनेक रूपों से सरकार, चर्च वाले कोई ना कोई अड़चन डालते रहते हैं, पर भक्तों में दृढ़ भाव है इसलिए प्रचार बढ़ते जा रहा है। तो वो भाव हमारे में भी होना चाहिए, हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हमने हर स्थिति में सेवा में जुड़ना है। वहाँ सुबह मैंने आपको ये भी कहा था कि जो श्री गोपाल जी का मंदिर है, ये है यहाँ पुष्टि मार्ग की शिक्षा प्राप्त होती है, जिसके संस्थापक आचार्य थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने वाराणसी में शिक्षा ग्रहण की थी और पुष्टि मार्ग का एक रूप से इस कौन से एक लंबा संबंध है। आप पूछोगे कैसे? श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज ने आदेश दिया था उन्हें तुम पढ़े लिखे युवक हो, दे जाओ चैतन्य महाप्रभु जी संदेश को पश्चिम देशों में। यह आदेश दिया था लगभग 1922 में, और 1965 में पापा जी विदेश जा पाए। पर विदेश जा पाए किसके सहयोग से, किसने सहयोग दिया था पापा जी का अमेरिका जाने में? श्रीमती मृणाल जी। श्रीमती मृणाल जी धार्मिक औरत थी, और आपकी जो सीना जी मंदिर हैं उनकी वो चीफ ट्रस्टी थी। तो श्रीमती मृणाल जी प्रभुपाद जी को मिली थी, सुना है कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के समय प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ। श्रीमती मृणाल जी ने उन्हें निमंत्रण दिया बॉम्बे आने के लिए, और जैसे मैंने कहा सुबह, बोला परचार्य ने इन विषयों पर बल दिया, परम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको प्राप्त करने का साधन है उनके नामों का उच्चारण और वैदिक साहित्य का असली ज्ञान है भगवत और गीता में। तो श्रीमती मृणाल जी को जब प्रभुपाद जी बॉम्बे में मिले, उसने कहा कि स्वामी जी अब मुझे रोज आकर भागवतम सुनाओ। तो प्रभुपाद जी रोज उनके घर जाते थे भागवतम सुनाने के लिए, और प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज के आदेश के अनुसार ग्रंथों का प्रकाशन आरंभ किया, क्योंकि 1965 में 1935 में प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांता जी से मिले थे राधाकुंड में। उस वक्त भक्ति सिद्धांता जी हजारों शिष्यों के साथ ब्रजमंडल परिक्रम कर रहे थे। तो भक्ति सिद्धांता जी ने कहा, अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो ग्रंथों को का अनुवाद करना और प्रकाशित करना। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में है ज्ञान। जैसे आज सुबह मैं कह रहा था, आज इस कौन संस्था के लगभग 700 केंद्र हैं। एक कारण ये है भक्तों का उत्साह, और एक और कारण ये है कि लोग जब ग्रंथों को पढ़ते हैं इसे बड़े प्रभावित होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, माता परतम नानियाल, मेरे वचन से ज़्यादा ऊँचा हो कोई वचन नहीं है। जब भगवान के उपदेश को पढ़ते हैं और साथ में तात्पर्य है, तो वो समझ पाते हैं ये होना चाहिए जीवन का लक्ष्य, और इन भक्तों में चार का उत्साह भी रहता है। जैसे आप जानते हो हमारे दिल्ली से 6 रूसी भक्त आए हैं जो कीर्तन भी कर रहे थे दोपहर को, अब उनका कीर्तन सुना। ये भक्त मुझे मिलने आए थे, कह रहे थे आज उन्होंने हरि नाम के साथ 18 गीता बाटी, और कोई 125 छोटी किताबें बाटी आपके धाम में। आप में से किसी ने ग्रंथ बांटे हैं आज इन रूसी भक्तों को छोड़कर? नहीं, और ये रूसी हैं, रूसी हिंदी के शायद 2 शब्द जानते हैं बस, पर उसमें ये गहरा भाव है कि अगर विश्व का उद्धार चाहिए तो इन ग्रंथों का संदेश माध्यम है। इसीलिए बड़े दृढ़ होकर प्रचार करते हैं, तो ये आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के प्रकाशन पर बल दिया, और श्रीमती मृणाल जी के पास गए थे इस विनती के साथ, मैं श्रीमद् भागवतम छापना चाहता हूँ, आप सहयोग दीजिएगा। प्रभुपाद दिल्ली में भागवतम का प्रथम स्कंद का पहला भाग छाप लिया था। श्रीमती मृणाल जी ने सहयोग दिया, जिसके द्वारा प्रभुपाद ने प्रथम स्कंद के दूसरे और तीसरे भाग को प्रकाशित किया। तो श्रीमती मुरारी जी को प्रभुपाद बकायदा मिलते थे। एक समय प्रभुपाद जी मिलने गए थे उनके दफ्तर में, उनके सेक्रेटरी का नाम था चोकसी, गुजराती नाम है। तो चोकसी ने कहा, मैडम बहुत बिजी है, नहीं मिल सकती। और प्रभुपाद जी ने सोच लिया था मैंने मिलना ही है। तो प्रभुपाद जी 5 घंटों के लिए उस बिल्डिंग की सीढ़ी में बैठकर जाप कर रहे थे। और शाम को जब श्रीमती मुरारी जी घर जा रही थी, क्योंकि प्रभुपाद ने सोचा बिल्डिंग से निकलने का गया तो एक ही रास्ता है, यहां से ही उसे निकलना पड़ेगा। तो 5 घंटे प्रभुपाद जी वहां जाप कर रहे थे। और फिर प्रभुपाद जी ने जब उन्हें कहा कि सहयोग दीजिएगा, उसने घर निमंत्रण दिया। तो श्रीमती मुरारी जी वल्लभाचार्य और पुष्टि मार्ग के बड़े प्रिय भक्त थे। और जब प्रभुपाद जी ने निर्णय किया कि आप मुझे विदेश में जाना है, तो प्रभुपाद जी फिर से गए थे श्रीमती मुरारी जी के पास। श्रीमती मुरारी जी ने कहा, आप इस उम्र में कहाँ जाओगे, 70 साल की आयु में आप मर जाओगे, इतनी ठंड है उधर। पर जब श्रीमती मुरारी जी ने देखा कि प्रभुपाद जी की बड़ी गहरी इच्छा है गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए, तो फिर उन्होंने पूरी सुविधा दी जिसके माध्यम से प्रभुपाद जा पाए। सबसे पहले उन्होंने बॉम्बे में अपने सेक्रेटरी को 500 रुपये दिए प्रभुपाद जी के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद के पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे। फिर उन्होंने जहाज के कैप्टन को कहा, इस स्वामी जी का खास ध्यान रखना। और कैप्टन को कहा कि जहाज में ज़्यादा सब्जी और फल और अन्न रखो, क्योंकि स्वामी जी वेजिटेरियन हैं। तो श्रीमती मुरारी जी ने कई रूपों से सहयोग दिया प्रभुपाद जी को विदेश भेजने में। और आप सब जानते हो कि इस साल हम इस्कॉन की सुवर्ण जयंती मना रहे हैं, सब जानते हो। पिछले साल सुवर्ण जयंती थी प्रभुपाद जी की डिपार्चर इंडिया से। प्रभुपाद जी भारत से निकले थे August 13, 1965 जलद्वीप जहाज में। ये जहाज था सिंधिया नेविगेशन कंपनी का, और सिंधिया नेविगेशन कंपनी की मालिक थी श्रीमती मुरारी जी। और श्रीमती मुरारी जी का संबंध था सिन्हा जी के साथ, वो वल्लभाचार्य की शिष्य थी। और ये जो सिन्हा जी मंदिर जाम आए हैं उसकी चीफ मैनेजिंग ट्रस्टी थी। तो एक रूप से आप देख सकते हो गोपाल जी की कृपा थी जिसके माध्यम से प्रभुपाद जी विदेश में गए। तो श्रीमती मुरारी जी का काफी गहरा हाथ था। असल में भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता, कृष्णा शक्ति बिना ना ही तारा प्रवर्ताना। और भगवान ने श्रीमती मुरारी जी को माध्यम बनाया प्रभुपाद की योजना को सफल बनाने में। और प्रभुपाद जी जलदूत जहाज में गए। जहाज में यात्रा करना इतना आसान नहीं है पानी के जहाज में। और प्रभुपाद जी का कोई अभ्यास नहीं था, सी सिकनेस। प्रभुपाद जी जब विदेश जा रहे थे तो सिंधिया कंपनी ने उन्हें एक टिकट दी कार्गो शिप में, साथ में उन्होंने एक सिंधिया कंपनी की डायरी भी दी। आजकल लोग ज़्यादा डायरी नहीं छापते, नहीं, आजकल कंप्यूटर का जमाना आ गया है, सब आपके टेलीफोन में रहता है कैसी हो। पर उन दिनों में कंप्यूटर का जमाना नहीं था, तो टिकट के साथ सिंधिया कंपनी ने प्रभुपाद जी को एक सिंधिया की डायरी भी दी थी। तो प्रभुपाद जी उस डायरी में रोज लिखते थे क्या घटना बीती है। जैसे शुरू के दिनों में प्रभुपाद जी ने लिखा, सी सिकनेस, वोमिटिंग, पर प्रभुपाद जी ने सब बर्दाश्त किया। क्यों? उनके मन में एक ही भाव था, 13वें दिन रास्ते में उन्हें हार्ट अटैक आया हल्का, फिर दूसरा हार्ट अटैक आया। तो प्रभुपाद जी सोचने लगे मेरी योजना सफल नहीं होगी, मुझे न्यूयॉर्क जाकर वापस लौट आना चाहिए। और फिर अगले दिन सपने में परम भक्त जैसे माधवेंद्र पुरी ने सपने में भगवान का आदेश लिया। और जैसे मैंने कहा सुबह, जब आप शुद्ध भक्त बन जाओ जब अपने सपने का महत्व रहेगा, जब तक शुद्ध नहीं नहीं भक्त बनते सपनों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को भगवान सपने में आए, भगवान ने कहा, भगवान नाव को चला रहे थे पटवारी के, पटवार के रूप में, और अनेक देवता उस नाव में बैठे थे और प्रभुपाद भी बैठे थे। भगवान ने कहा, अभय चरण घबराओ मत, तुम्हारी योजना सफल होगी। तो इससे प्रभुपाद जी का हौसला बढ़ा और फिर प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में पहुंचे। न्यूयॉर्क में पहुंचकर पेंसिल्वेनिया गए, जहाँ की एक व्यक्ति था गोपाल अग्रवाल, जिसने प्रभुपाद को निमंत्रण दिया था। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे 3 महीने के वीजा के साथ। प्रभुपाद जी का यह विचार था, जाऊंगा स्थापना करके 3 महीने में वापस लौट आऊंगा। तो न्यूयॉर्क में गए, वहां अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क शहर में रहना इतना आसान नहीं है, और प्रभुपाद जी के पास ना कोई जान पहचान थी। जैसे आप जानते हैं प्रभुपाद भारत से निकले थे कितने रुपए के साथ, जो कि उन दिनों में 600 या 700 डॉलर के बराबर था, और प्रभुपाद जी ने $20 जहाज में कमाए। कैसे? एक भगवतम का सेट बेचा, एक भगवतम का सेट बेचा किसे? जहाज के कैप्टन को, कैप्टन पांडे को। तो प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में पहुंचे तो उनके पास कोई $26 थे बस, पर उन्हें पूरा विश्वास था क्योंकि योजना सफल हो गई। एक समय प्रभुपाद जी को एक बस कंडक्टर मिला। प्रभुपाद जी एक बगीचे में थे, तो ये बस कंडक्टर का नाम था मिस्टर रूबन। तो उसने प्रभुपाद जी से पूछा, आप क्या करते हो स्वामी जी, व्हाट डू यू डू? स्वामी जी ने कहा, मैं यहाँ भगवान का संदेश पहुँचाने आया हूँ। मुझे पता है कि मंदिर है, भक्त हैं, और केवल समय का प्रश्न है। मतलब कि प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि जो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी है, पृथ्वी आज जतना सर्वदा प्रचार नाम विश्व के हर कोने में यह नाम पहुंचेगा, ये सफल होगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रभुपाद के भक्तों के प्रयास से ये सफल हो रहा है दिन पे दिन। जब प्रभुपाद जी इस पृथ्वी से प्रकट हुए November 1977, उस समय इस्कॉन के कोई 140 या 50 मंदिर थे और आज लगभग 700 हैं। और उस समय प्रभुपाद जी के ग्रंथ 80 से अधिक भाषा में प्रकाशित हो गए हैं और सारे विश्व में लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की पवित्रता और प्रयास से आज ये कृष्ण भक्ति का प्रचार बढ़ते जा रहा है। और प्रभुपाद जी कहते थे कि संस्था का एक ही उद्देश्य है, लोगों को सुखी बनाना, लोगों को असली सुख देना, नकली नहीं। भौतिक समाज में हम सब नकली सुख के पीछे भागते हैं, सोचते हैं फिल्में देख लेंगे, टीवी प्रोग्राम देख लेंगे, गाने सुन लेंगे, आनंद आएगा। जैसे आजकल जियो टेलीफोन का एडवर्टाइजमेंट हर जगह देखते हैं आप, फ्री, जिंदगी में कोई चीज मुफ्त में मिलती है आपको। उनका सोचना है 100 लोग लेते हैं। मैं उस दिन जियो के एक अधिकारी से बात कर रहा था तो मैंने कहा आप लोग मुफ्त में दे रहे हो, उनका ये भाव है 100 आदमियों को मुफ्त देंगे तो 50 और 7 जुड़े रहेंगे 6 महीने के बाद जब पैसा देना पड़ेगा। तो लोग ये क्यों ले रहे हैं, 1 करोड़ फिल्मी गाने, 600 फिल्में, और एक चैनल, ये सब सुनने की और देखने की सुविधा है। तो हम सोचते हैं फिल्मों को देख लेंगे, गाने सुन लेंगे, इसमें आनंद है। असली आनंद है किसमें, भक्ति में। तो आप सब जो भक्ति के मार्ग में जुड़े हो असली आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा के श्लोक में कहा है चैतन्य परमार्जनम, भगवान के नामों के उच्चारण का एक लाभ यह है कि हमारे हृदय में जो भौतिक आकर्षण है जो कि हम अनुभव करते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के द्वारा, ये दूर हो जाएगा। और आनंद बुद्धि बोलना, ऐसे ही आनंद भी आप अनुभव कर सकोगे। तो हमें किसी न किसी रूप से आध्यात्मिक विषय में रुचि बढ़ानी चाहिए। जैसे आज आपने मालवेंद्रपुरी की कथा सुनी, श्री गोपाल जी का दर्शन लिया, ये नहीं सोचना चाहिए दर्शन के लिए, हमारे मन में भाव होना चाहिए कि हम सदा भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें और इस प्रकार आप जीवन को सफल बना पाओगे। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिनाई के साथ June 1966 में इस्कॉन संस्था की स्थापना की और प्रभुपाद जी का यही उद्देश्य था कि लोग कृष्ण भक्ति को लेकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान है जिनकी चर्चा की थी सुबह, चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को बहुत गहरा उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने कहा था सुबह, चैतन्य महाप्रभु को सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार माना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूपण सनातन, ये दो चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रसिद्ध भक्त है। अब छह गोस्वामियों के विषय में सुनते हो। एक समय दोनों भाई उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। वो दोनों ने दोनों की रुचि नहीं थी इसमें, और पहले रूप गोस्वामी ने नौकरी दिया कि फिर उनके भाई सनातन ने, तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा देते हुए पांच महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया, जिनमें सबसे पहले था साधु संघ। तो आप सुन बैठे हो साधु संघ का महत्व। भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिलदेव भगवान की शिक्षा प्राप्त होती है। कपिलदेव भगवान की भगवान के अवतार थे, जिनकी माता का नाम था देवहूति और पिता का नाम था, तो माता को पता था कि मेरा बेटा भगवान का अवतार है। तो माता ने कहा कि तुम मेरे आध्यात्मिक नेत्र हो, मुझे शिक्षा दो कि इस प्रकार से मैं इन सब भौतिक कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर सकती हूँ। जब बेटे ने यह प्रश्न पूछा तो बड़े खुश हुए। आप लोग हरि नाम करते हो, मेरे कोई आपसे आके पूछे हरि नाम का क्या लाभ, हमें भी हरि नाम करना चाहिए, आप खुश नहीं हो जाते? हाँ, कोई आपको कहे मुझे भी गीता दो, खुश हो जाते हो। तो इसी प्रकार भक्त खुश हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि आध्यात्मिक प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि परीक्षित महाराज ने भी पूछा, जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तो कपिलदेव भगवान ने कहा कि हमें साधु संग में रहना चाहिए, साधुओं के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहिए। हम अज्ञानता में भौतिक संबंध भौतिक रिश्तों को बढ़ाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि भौतिक रिश्तों को ध्यान नहीं दो, पर हमें ये देख लेना चाहिए कि हर चीज अस्थाई है, और एक संबंध जो कभी नहीं टूटेगा वो किसके साथ है। तो हम बेटे ने कहा साधु संघ का लाभ उठाओ, और भागवतम में अनेक श्लोक हैं, अनेक कथाएं हैं जिनके द्वारा आपको यही संदेश मिलता है। ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी जिसके कारण उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा ध्रुव मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने इतनी तपस्या की, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। और ध्रुव ने कहा कि अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि सदा मुझे उत्तम भक्तों की संगत मिले, क्योंकि उस संगत के द्वारा मुझे ज्ञान मिलेगा जिसके सहयोग से मैं जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। तो आप भक्तों को साधु संगत पर बल देना चाहिए, और आज प्रभुपाद जी की कृपा से आप ये संगत बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ये साधु संगत प्राप्त करने के दो माध्यम हैं। एक है भक्त साधु, दूसरा है ग्रंथ साधु। तो ग्रंथ साधु का क्या अर्थ? ग्रंथ साधु का अर्थ है कि जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हो एकदम आपको भगवान की संगत मिलती है, क्योंकि गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री भगवान उवाच, परम भगवान बोल रहे हैं। साथ में जो तात्पर्य है जिनकी व्याख्या प्रभुपाद जी ने की है। और प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखते थे तो महान आचार्यों के तात्पर्य को भी पढ़ते थे, तो आप उनकी संगत भी प्राप्त कर रहे हो। जैसे आज हमने माधवेंद्रपुरी की कथा सुनी, आपको ये सूचना मिलेगी जो श्री गोपाल जी का विग्रह है, इसकी स्थापना प्रथम बार तो 5,000 साल पहले हुई थी। तो कहने का अर्थ है, जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हो तो महान संतों की और भगवान की संगत हमें मिलती है। आज विश्व में हजारों भक्त हैं जिनका पहले परिचय प्रभुपाद के ग्रंथों से हुआ था और ग्रंथों से के ध्यान से प्रभावित होकर वो भक्ति में जुड़े। तो दोनों की आवश्यकता है, ग्रंथ भगवत संगत और साधु संगत। साधु संग में रहोगे तो सदा सुनते रहोगे हरि नाम की महिमा। शास्त्र में कहा गया है, कले दोष ही नहीं दे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलयुग में, क्या है वो? भगवान के नाम। भगवान ने नामों में पूरी शक्ति डाली है और कहा गया है शास्त्र में, काली काली नामा रूपा कृष्ण अवतार। बहुत ही बड़ी व्यक्ति समझ नहीं पाते कैसे संभव है कि आप एक ही नाम का उच्चारण सुबह से शाम तक कर सकते हो। आप सब हरिदास ठाकुर से परिचित हो, हरिदास ठाकुर दिन में कितनी बार जाप करते थे? तो ये संभव है क्यों? क्योंकि भगवान के नाम और वो में कोई अंत नहीं। सुबह मैंने आपको एक भक्ति रसामृत सिंधु की कथा सुनाई थी, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण क्या कर रहा था, भगवान से भगवान का सुंदर मंदिर बनाया, विग्रह की स्थापना की और पूजा कर रहा था। तो अगर आप कहो हाँ भाई नाम लेंगे पर मन ही मन में लेंगे, तो ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। हरि नाम लेना है तो हमें आचार्यों के उपदेश के अनुसार लेना चाहिए। तो जितने ध्यान से लेंगे उतना ही इसका परिणाम होगा। फिर भागवत का अध्ययन, जैसे मैं कह रहा था, ग्रंथों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। इन ग्रंथों में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो जितने ध्यान से पढ़ोगे उतना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। श्री प्रभुपाद जी ने हमें सारे हथियार दिए हैं माया का विरोध करने के लिए, हम इन हथियारों का लाभ उठाना चाहे। श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक भक्ति का संदेश प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में शुरू से अंत तक भक्ति का संदेश प्राप्त हो रहा है, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, प्रहलाद महाराज से जब उनके पिता ने पूछा कि ये बताइए कि आपके अध्यापक ने क्या सिखाया है, मेरे ने क्या चीज का वर्णन किया, श्रवणम कीर्तनम का। तो आप सबका अनुभव है कि जब आप ध्यान से जाप करते हो तो आध्यात्मिक जीवन सरल बन जाता है। सच बात है। अब अजीत साधना रखो, जाप करो, शास्त्रों का ध्यान करो, साधु संग में रहो, तो आध्यात्मिक जीवन सरल ही हो जाता है। और जब आप इन चीजों का पालन नहीं करो तो क्या परिणाम होता है? ये आध्यात्मिक जीवन कठिन बन जाता है। तो आप सबका सौभाग्य हो, सौभाग्य है आप भक्ति में जुड़े हो। आप सबका प्रयास रहना चाहिए कि किसी स्थिति में भी आप विचलित नहीं हो। और अगर हम भगवान की शरण लेंगे उनकी शिक्षा के पालन के द्वारा, तो बिना शंका के जीवन को सफल बना सकोगे। तो यही है आप सबसे निवेदन, ये जो यात्रा यहाँ आई है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, भक्तों के साथ रहोगे, साधु संग में रहोगे, हरि नाम करोगे, उपदेश सुनोगे, तो आप सोच सकोगे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। और भक्तों की संगत के बिना भी आप जी नहीं सकते। नौकरी करना है, दफ्तर में जाना है, व्यापार करना है, पढ़ाई करना है, तो भक्तों की संगत में तो आना पड़ता है। सत्संगति आ गए वैष्णव चारा, पर उनकी संगत उतना ही ग्रहण करो जितना कि आवश्यक हो। और अगर आप प्रयास करोगे तो भगवान अवश्य ही सहयोग देंगे। प्रभुपाद जी कहते थे, यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक 10 steps टुवर्ड्स यू। आप एक कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे आपकी तरफ। क्योंकि भगवान की इच्छा क्या है? सबका उद्धार हो। चैतन्य महाप्रभु एक दिन हरिदास ठाकुर की कुटिया में पहुंचे और महाप्रभु ने कहा, हरिदास ये बड़ा बताओ इन बच्चों का उद्धार कैसे होगा, क्या होगा? हरिदास ने कहा, प्रभु चिंता न करे, घबराओ मत, हरि का नाम लेंगे प्रादों से रहित, उसके द्वारा उनका उद्धार होगा। तो हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए, हम हरि नाम ध्यान से करें, ग्रंथों को पढ़ें और साधु संगत में रहें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, साधु संग में रहो, हरि नाम का लाभ उठाओ, भगवत का अध्ययन करो और आचार विग्रह की पूजा करो श्रद्धा और प्रेम के साथ। भगवान हरि नाम में प्रकट होते हैं, अपने आचार विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, और इस आचार विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी कृपा से भक्ति बहुत सरल हो गई है, और इस्कॉन के भक्तों के लिए भक्ति और भी सरल हो गई है। आप कहोगे कैसे? जहां जाओ इस्कॉन के केंद्र हैं, जहां जाओ आपको भक्त मिल जाएंगे। विश्व के किसी कोने में जाओ आपको भक्त मिलेंगे, और बड़े सुंदर विग्रह के यहाँ दर्शन प्राप्त कर सकते हो। और आजकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के सहयोग से आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अपनी जेब में भी उठा सकते हो। किसने सोचा था एक दिन आएगा कि आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अपने स्मार्टफोन में बिठा सकोगे? किसी ने सोचा था? ये सुविधा तो है आपके लिए, पर बीबीटी के लिए बड़ा सौदा है। क्योंकि आप ग्रंथों को खरीदने के बजाय स्मार्टफोन में ग्रंथों को डाल सकते हो। खैर, इसका कई कई भक्त हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। आप इन टेलीफोन का दुरुपयोग भी कर सकते हो, सदुपयोग भी कर सकते हो। दुरुपयोग कर सकते हो गंदी चीजों को देखने के लिए, सदुपयोग कर सकते हो भगवान के आचार विग्रह की तस्वीरों को वहां बिठाकर, भगवान के उपदेश को वहां बिठाकर, और इनका आप सरलता से लाभ उठा सकते हो। जब ये समय मेरे दफ्तर में इन श्लोकों को पढ़ो, हमारे कई भक्त जो मुझे कहते हैं वो दफ्तर में रोज 1-2 घंटा भागवतम पढ़ते हैं स्मार्टफोन से। तो एक रूप से सुविधा भी मिल रही है जिसके द्वारा हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकें। तो भौतिक समाज में हम सब भूखे और प्यासे हैं भौतिक सुख के लिए। सुबह हमने संक्षेप में गोवर्धन लीला का वर्णन किया था, जब भगवान ब्रज गोवर्धन पर्वत को उठा रहे थे ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए, सारे ब्रजवासी उनके चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहे थे, और जो भौतिक भूख और प्यास बिल्कुल मिट गई थी। तो ये जो भौतिक आकर्षण है हमारा, अगर आप इसे घटाना चाहो तो एक ही उपाय है, आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ाओ। तो कपिला देव ने अपनी माता को कहा, संतों के प्रति आकर्षण बढ़ाओ। और आगे जाकर माता ने पूछा, संतों के क्या लक्षण है? तो उन्होंने वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, तितिक्ष्वाकरु ने कहा, सूर्यदास सर्वाधी नाम अजदव सत्व संत साधु साधु। कितने लोगों को ये श्लोक कंठस्थ किया हुआ है सुने? तो भगवान कपिल देव ने कहा, साधु का ये अर्थ नहीं कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी, साधु का ये अर्थ है जो व्यक्ति चाहे पुरुष हो स्त्री हो, जो भगवान के शरण में जुड़ना चाहता है। तो साधु को तितिक्षवा सहनशील होना चाहिए। तो हम सबको सहनशील होना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक संसार में जैसे भगवान गीता में कहते हैं, सुख दुख आदर अपमान हार जीत ये सब तो अनुभव करना पड़ेगा। करुणी कहा, दया की भावना, और क्योंकि ये दया की भावना अनुकूल होनी चाहिए। कई बार भक्त कहते हैं, आप सब कहते हो प्रचार करो, भगवान भी कहते हैं प्रचार करो, पर हमारे में वो भाव है ही नहीं। लोगों ने नरक में जाने तो जाने दो, हमने अपने आप को तो बचा लिया, तो वो भाव है ही नहीं। ये बात सच है, इतना गहरा भाव है नहीं। पर अगर हम शास्त्रों के और संतों की वाणी में विश्वास रखेंगे और उनके आदेश के अनुसार चलेंगे, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, अगर तुम तो मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करो, ग्रंथों को बांटो। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी ग्रंथों के माध्यम से लोगों का उद्धार हो। तो बेशक हमारे में यह भाव नहीं है, पर अगर हम केवल यही सोचें कि प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त थे, अगर उन्होंने कहा है कि ग्रंथों को बांटो तो जरूर इसका कुछ लाभ होगा। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा, ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई एक श्लोक पढ़ ले और एक श्लोक को अजमा ले अपने जीवन में, उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है, तो हमारे में तो वो भाव नहीं है, हमारे में वो रियलाइजेशन नहीं है। पर केवल अगर हम ये विश्वास करें, अगर भगवान कह रहे हैं यादा परम गुह्यम, सब भक्त में सबसे प्रिय है भक्त जो प्रचार करता है, तो मुझे भी प्रचार करना चाहिए, तो ये भाव रख कर प्रयास करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आप सबसे यही निवेदन है, इन सब चीजों का लाभ उठाओ। ये नहीं कि आप इन बातों को पहली बार सुन रहे हो, रोज ही सुनते हो, और बार बार सुनने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम इतने पुराने मानना, इतने ढीठ हैं कि हजारों बार सुनने के कारण भी कुछ खास असर नहीं पड़ता। इसलिए कहा गया है, नस्तप्रेषु अपद्रेषु नित्यं भगवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भगवती नैति। नियमित रूप से रोज भगवत का उपदेश सुनो, रोज हरि नाम सुनो, फिर उसका प्रभाव आएगा। तो अनेक भक्तों के अनेक प्रश्न थे, और मेरे ख्याल से अमोघ लीला प्रभु ने इन सब प्रश्नों का लिस्ट बनाया है। तो अनेक भक्तों ने मुझे प्रश्न पूछे थे, मैंने कहा कि शाम को उनको उत्तर देंगे, तो अगर आप बोलो तो प्रश्न उत्तर करें अभी। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।